नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि देश की सभी तेल रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक है और देश में सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त आपूर्ति है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूरे देश में सामान्य है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारतीय मिशन और दूतावास भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ानों के कारण हवाई संचालन में सुधार हो रहा है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 4,50,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। ये हवाई अड्डा उन्नत कार्गो प्रणाली से लैस है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी विधानसभा चुनाव और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। मतदान 9 अप्रैल को होगा। आयोग ने कहा है कि जांच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने कहा है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जिससे मतदाताओं के बीच नकद और मुफ्त उपहारों के वितरण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि 15 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए पुदुचेरी का दौरा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना की आशंका वाले स्थलों की पहचान की है। मंत्रालय ने इन मार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक उपाय किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दुर्घटना की आशंका वाले लगभग 350 चिन्हित स्थलों में से 280 में सुधार किया जा चुका है। श्री गडकरी ने कहा कि देश के ऑटोमोबाइल उद्योग में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ है और अब हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है और हम 7वें नंबर से 3रे नंबर पर आए हैं। और मेरे मिनिस्ट्री का ये मिशन है कि हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को विश्व में पहले नंबर पर लेकर जाएंगे।
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आलू किसानों की बिगड़ती स्थिति और निर्यात संबंधी प्रतिबंधों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शामिक भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि बंगाल सरकार के प्रतिबंधों के कारण स्थानीय किसान अपनी उपज को अन्य राज्यों में बेच नहीं पा रहे हैं। पहले बंगाल में उगाई हुई आलू को उड़ीसा भेजा जाता था, लेकिन अब इन पर रोक लगा दी गई है। श्री भट्टाचार्य ने दावा किया कि अवैध रेत खनन से बंगाल की नदियां प्रभावित हो रही हैं और उपजाऊ खेती की जमीन जलमग्न हो रही है। इससे धान के किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें बलूच लोगों की हत्याएं, उन्हें जबरन गायब करना और यातना देना शामिल है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कम लागत वाली सौर ऊर्जा और बैटरी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तेजी से खुद को वैश्विक विद्युत तकनीक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि ऊर्जा संप्रभुता के लिए भारत का प्रयास उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक त्वरित विकास मॉडल के रूप में काम कर सकता है। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए विशाल यादव और उमांग डोडुम ने गोल दागे। भारत और बांग्लादेश अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनके आगामी मुकाबले में ग्रुप बी के शीर्ष का फैसला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।